अनुराग माइनस वर्मा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये है पॉडकास्ट का एपिसोड 2, लेकिन एपिसोड 1 और 2 के बीच काफ़ी लंबा गैप आ गया, जिसका रीज़न ये था कि इनफैक्ट जिसके कई रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे, जिसके कारण हम लास्ट गेस्ट के साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हमने काफ़ी दिनों तक ट्राई किया। उसके अलावा मेरा सिस्टम भी बीच में पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। सो फाइनली आज हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मेरे जो गेस्ट हैं उनका नाम है दुर्गेश कुमार। दुर्गेश जी बॉलीवुड में एक्टर हैं, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि दिल बेचारा, हाईवे, संजू, धड़क इत्यादि। इसके अलावा ये बहुत सारी चर्चित वेब सीरीज, टीवी सीरीज में भी आ चुके हैं, और इन्होंने एड फिल्म्स की दुनिया में भी खूब काम किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दुर्गेश जी पॉडकास्ट में आने के लिए।
नमस्कार। नमस्कार, आपका धन्यवाद।
सो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं?
जी, मैं बेसिकली दरभंगा जिला बिहार से हूँ, और मैं 12th के बाद दिल्ली आया हुआ था। दिल्ली में मैंने 13 साल थिएटर किया है, और फिर उसके बाद मैं मुंबई आया।
दिल्ली में आपने ट्रेनिंग NSDE से ली या फिर आप थिएटर करते थे?
जी हाँ, मैं वहाँ पे पहले श्रीराम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से 2 ईयर डिप्लोमा किया।
अच्छा।
फिर उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पोस्ट ग्रेजुएशन किया ड्रामेटिक आर्ट्स में। फिर वहाँ की रेपेट्री कंपनी में 1 साल काम किया, और वहीं मुझे पहली फिल्म हाईवे इम्तियाज अली जी की मिली, और फिर मैं मुंबई की तरफ रुख किया।
सो इसके अंदर मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आपको बॉम्बे आने से पहले काम मिल गया, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, क्योंकि नॉर्मली लोग पहले बॉम्बे आते हैं, फिर वहाँ पे रहने का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, उसको जीते हैं, फिर तरह तरह के प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर जाके उनको स्क्रीन पे आने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप पहले से आपके पास कोई काम हो और फिर आप बॉम्बे आए, तो वो एक तरह का कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करता है। तो उस चीज के बारे में थोड़ा बताइए कि ऑडिशन आपने दिल्ली में ही दिया था, और उसका क्या प्रोसेस था?
देखिए, मेरा पहला लक्ष्य तो यही था जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास का होता है, कि पहले ट्रेनिंग अपनी पक्की करो। तो मैंने 2 ईयर डिप्लोमा श्रीराम सेंटर से लिया, और फिर मैंने NSDE संयोग से मिला तो NSDE किया। फिर मेरा ड्रीम था कि मैं वहां की रेपेट्री कंपनी में एज एन एक अच्छे एक्टर के तौर पे पहले एस्टेब्लिश हो जाऊं, फिर मैं फिल्मों की तरफ हाथ पैर मारूंगा। लेकिन वहां पर फर्स्ट ईयर, मतलब समझिए मुझे 1 साल ही हुए थे, कि वहां मैंने छोटे मोटे ऑडिशन देने शुरू कर दिए। तो उसी ऑडिशन देने के दौरान मुझे ये फिल्म मिली, और फिर मुझे लगा कि मेरा काम दिखाने लायक है, तो अब मुझे मुंबई आना चाहिए, तो मैं मुंबई आया।
तो आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए कि कैसे दरभंगा में आपका एक्टिंग की तरफ रुझान हुआ, और किस तरह से आप बॉलीवुड आने का आपने किस तरह से सोचा?
जी, हुआ ऐसे कि बचपन में फिल्म देखना और सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता था। मतलब क्रिकेट खेलना होता है, ये सब देखना चाह, पर एक्टर बनना है ऐसा मेरे माइंड में कभी नहीं था, कि मुझे एक्टर ही बनना है ऐसा नहीं था। 12th तक पढ़ाई की, मेरे बड़े भाई साहब आए दिल्ली, तो उन्हीं के साथ मैं भी दिल्ली आ गया था कि इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, और कहीं से IIT तो बड़ी मुश्किल चीज है, कहीं से BCA MCA करके जॉब वॉब करेंगे, अपनी अच्छी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन उसी दौरान मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि आप शाम को थिएटर कर सकते हैं, यहाँ पर थिएटर की अच्छी कल्चर है, अच्छा कल्चर है। तो दिल्ली में मैंने 2001 में पहला प्ले किया, ताजमहल का टेंडर, एक बाहर का ग्रुप था, उद्देश्य ग्रुप, उनके साथ। और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। 45 दिन के वर्कशॉप के बाद वो प्ले किया था, तो मैंने SRC के लिए 2-3 बार ट्राई किया, तो मुझे तीसरी बार में SRC मिला। तो SRC में मैं जब 2 साल सीखा, तो मुझे लगा कि, और ये समझ लीजिए कि मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे फिल्मों में जाना है, मुझे बड़ा एक्टर बनना है, ये जस्ट जैसे कोई पॉलिटेक्निक करता है, जैसे कोई नर्सिंग कोर्स करता है, मैं वैसे ये कोर्स कर रहा था। तो वो किया, फिर मुझे अच्छा लगा 2 ईयर, फिर उसके बाद 2 साल फिर बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, राम गोपाल बजाज जी के साथ, वीके शर्मा जी के साथ, अजय कुमार जी के साथ, इन लोगों के साथ काम किया एनएसडी से पहले। फिर मैंने पहली बार दिया तो मेरा नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरी बार दिया तो मुझे एनएसडी मिल गया, फिर भी मेरा बॉम्बे आने का नहीं हुआ एनएसडी पास होने के बाद। फिर मैंने सोचा यहाँ की रेपेट्री कंपनी में अच्छे से काम करूंगा ताकि लोग जान जाएं कि दुर्गेश इस तरह का काम करता है, दुर्गेश ऐसा एक्टर है, तो वो जनवाने के लिए आपको लंबे समय तक दिल्ली में काम करना पड़ता है। तो मैं रेपेट्री दिया, रेपेट्री मिल गया मुझे, फिर रेपेट्री में मैंने 1 साल काम किया और वही छोटे छोटे जो दिल्ली में ऑडिशंस होते हैं वो मैं दे रहा था, तो उसी में मैंने एक ऑडिशन दिया मुकेश छाबड़ा जी को और उन्होंने मुझे ये मौका दिया।
तो इसमें दूसरी चीज ये आती है कि एक्टिंग के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होना कितना जरूरी है, और वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग बॉलीवुड में कितना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, या फिर लेते हैं तो बॉम्बे में पहले आते हैं, फिर कोई ना कोई अकेडमी ज्वाइन करके फिर वो कोई ट्रेनिंग ले लेते हैं, और कुछ लोग तो डायरेक्ट ऑडिशन देते हैं और इसी बीच सीख जाते हैं या नहीं सीखते, जो भी है। तो क्या आपको लगता है कि किसी इंस्टीट्यूट जैसे कि FTI, NSD इनसे पढ़ के अगर आप बॉलीवुड आए तो उसका एक अपना बेनिफिट आपको मिलता है?
वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उस वो हो जाने से आपको काम मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक एलिजिबिलिटी है, पर वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो आप परफॉर्म करने में आपको मदद करता है, वो कैमरा जब ओपन होता है और 50 की क्राउड है और वहां आप एक एक्टर के साथ एक्टिंग कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस तो देता है। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज जो मुझे 7 साल मुंबई में समझ में आई कि आपको घर से बाहर निकलकर काम मांगने के लिए निकलना ही पड़ेगा, चाहे आप NSD पास आउट हो, चाहे आप भोपाल में नाटक किया हो, चाहे जयपुर में, कहीं भी।
तो इसमें मेरी ये बड़ी क्यूरियोसिटी है कि ये जो काम मांगने का प्रोसेस है एक्टर के लिए, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए।
देखिए, इसका मैंने एक छोटा सा रूल क्रैक किया जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फेसबुक होता है, उसपे हर कास्टिंग वालों का अपना एक पेज है, उसपे एक ईमेल एड्रेस है, उसमें आप अपने मतलब हर 2 महीने में अपना प्रोफाइल भेजते रहिए अपडेट करके कि आपने जो जो काम किया है या जो जो आपने थिएटर ट्रेनिंग ली है, वो रेगुलर बेसिस पे आप भेजते रहिए। फिर से आरामनगर Part 1 और Part 2 ये अभी हब है, तो अभी तो लॉकडाउन के बाद क्या नहीं बता सकता, पर लॉकडाउन से पहले आपको डोर टू डोर जाके भाई मैं फिट हूं तो ले लो ऑडिशन, नहीं फिट हो तो कोई बात नहीं। और इसमें मुझे एक चीज जो समझ में आई कि ये आपका हक है, ये आपका ये नहीं है कि अरे तुम्हारे लिए काम नहीं है तो तुम्हारा ह्यूमिलिएट कर दूं, नॉट फिट, नहीं नहीं नहीं, ये आपका हक है कि किसी कास्टिंग वाले से पूछिए कि दादा मैं फिट हूं तो ऑडिशन ले लो, नहीं हूं तो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो चीज है कि हर मेल पे, हर ईमेल एड्रेस पे अपना प्रोफाइल रेगुलर भेजना, और जो आपके दायरे में जो कुछ आते हैं लोग उनसे डायरेक्ट मिलना, भाई मेरे लायक कुछ है तो बताइए, और जब इसी में से 1-2 ad या 1-2 TV सीरीज या 1-2 web सीरीज क्रैक होता है ना, खुद लोग बुलाने लगना शुरू कर देते हैं। और मैंने भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, पर जो भी छोटा बहुत किया है वो ऐसे ही किया है।
तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने इस पूरी चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली लिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस प्रोसेस से बहुत ही डिसहार्टन हो जाते हैं, क्योंकि आप ऑडिशन में जाते हैं और वहाँ पे आपको देख के नॉट फिट बोल दिया जाता है, या फिर एंट्री ही नहीं देते या ऑडिशन ही नहीं लेते कई बार। तो ये कॉन्स्टेंट जजमेंट जो है एक एक्टर के लिए, तो ये मेरे हिसाब से मेंटली बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसेस होता होगा। मुझे ये भी लगता है कि एक्टिंग सिनेमा की एक ऐसी फील्ड है, स्पेशली बॉलीवुड में, जहाँ पे रिस्क भी बहुत हाई है और रिटर्न्स भी काफ़ी हाई हैं अगर आप उसमें सक्सेसफुल बन जाओ तो। फाइनेंशियल और करियर वाइज रिस्क तो अलग हैं, बट इसके मेंटल रिस्क भी बहुत अलग हैं, क्योंकि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग और प्रिपेयर खुद को करना पड़ता है इस तरह के रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन और इस तरह की लाइफ जीना जिसमें लोग आपको देख के जज कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अपने आप में एक सोल क्रंचिंग प्रोसेस है। सो इसीलिए मैं एक्टर्स की लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि वो इन चीज़ों को डील कैसे करते हैं। तो आपने इस पूरे प्रोसेस को एक बहुत ही होपफुल और एज अ स्पोर्ट की तरह देखा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा तरीका है इस पूरे प्रोसेस को डील करने के लिए। तो आपने बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में की हैं, तो उसमें से स्पेशली मेरी मुझे जो सबसे फेवरेट लगी वो हाईवे में आपका रोल लगा, और इस तरह का रस्टिक रोल के अंदर भी आप एक तरह की लाइकेबिलिटी और एक तरह की क्यूटनेस आप जो उस रोल के अंदर लेके आए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो मेरा सवाल ये है कि आपने उस रोल के लिए कैसे प्रिपेयर किया सबसे पहले, और दूसरा सवाल ये है कि इम्तियाज़ अली के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि इम्तियाज़ अली की फिल्मों में एक्टिंग जो है वो एक अलग से निखर के आती है, तो वो ऐसा उनका प्रोसेस क्या है एक्टर से डील करने का, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए।
देखिए मैंने सर ऑडिशन दिया, मैंने उस फिल्म का ऑडिशन भी नहीं दिया, आपको ट्रूथफुली बताऊं।
हाईवे का
मैंने एक पीके फिल्म का ऑडिशन दिया था।
अच्छा।
मैंने हाईवे का ऑडिशन नहीं दिया है। मैंने पीके फिल्म का ऑडिशन दिया था, उसी ऑडिशन के बेसिस पर मुझे ये फिल्म मिली थी। और फिर वो जब मुझे वो पार्ट मिला तो बहुत अच्छा लगा कि उनकी जो असिस्टेंट लोगों की टीम थी उन्होंने मुझे एक डेढ़ हफ्ते तक जिधर के वो गुजर लोग रहते हैं ना दिल्ली में, उधर ले जाके उनका उनका बिहेवियर, उनका लैंग्वेज, उनका पहनने का तरीका, ये सब ऑब्जर्व करने के लिए मुझे वहां भेजा उन्होंने, और मेरे साथ रहते थे अभिषेक रॉय सोनियाल, उनके एक असिस्टेंट हैं, उनके साथ मैं एक डेढ़ हफ्ते उधर गया। फिर उसके बाद जो लाइंस लिखी हुई थी उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने गुजरी डाला, उनका जो रफ रहने का तरीका है वो डाला। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, इम्तियाज अली सर ज्यादा आपको बोलते नहीं है, वो आपको बोलते हैं आप कीजिए, और उसमें से बोलते हैं कि थोड़ा कम कर दीजिए और थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। मुझे इतना वो तरीका अच्छा लगा, और तभी मुझे लगता है कि वो परफॉर्मेंस निकल के आया। वो आपको लादते नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही करो, नहीं तुम करो, उसमें मैं तुम्हें सुर बताऊंगा कि थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम है। ये तरीके से उन्होंने पूरे 45 डेज काम किया।
सो ये भी मेरे हिसाब से काफी बड़े डायरेक्टर्स की एक खूबी है, जिसके अंदर वो किसी भी आर्टिस्ट को, चाहे किसी भी फील्ड से हो, सिनेमेटोग्राफी या फिर एक्टिंग या एडिटिंग, तो वो उन्हें पूरा स्पेस देते हैं या फिर एक तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे वो अपने इंस्टिंक्ट और एक्सपर्टीज के अनुसार काम कर सकें। तो जो बड़े डायरेक्टर्स हैं जो खुद के क्राफ्ट को लेके कॉन्फिडेंट हैं, तो वो एक तरह से इसको एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की तरह देखते हैं, जिसमें हर आर्टिस्ट की जो भी एनर्जी है उसी का वो अपना एक रिदम बना देते हैं, ना कि उसके साथ कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करें। सो मेरा नेक्स्ट सवाल ऐसा था कि आजकल रिसेंटली बॉलीवुड के बारे में काफ़ी तरह की डिबेट्स चल रही हैं, तो उसमें से एक जो चीज़ है वो मुझे लगती है कि बॉम्बे में रहने के जो चैलेंजेस हैं उनको ठीक से लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। तो इसके अंदर जो भी आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, उनके पर्सनल चैलेंजेस या फिर प्रोफेशनल चैलेंजेस, हर महीने रेंट देना, ये करना है, वो तो एक अलग चैलेंज है ही, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि बॉलीवुड या फिर इंडस्ट्री जो है उसमें सेंस ऑफ कम्युनिटी इतना स्ट्रांग है नहीं जितना दिखता है। तो लोग काफ़ी काम से काम रखते हैं, उस तरह की एक आइडिया है, तो उसमें कम्युनिटी फीलिंग उतनी है नहीं। तो इसके अंदर जो है काफ़ी लोग लोनलीनेस और लैक ऑफ ग्रुप या फिर लैक ऑफ फ्रेंड्स, इस तरह की भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं लोगों में, बहुत ज़्यादा होती है इनफैक्ट बॉलीवुड के अंदर। तो ये भी अपने आप में एक लाइफस्टाइल चैलेंज है, स्पेशली जब आप बाहर से आते हो, किसी छोटे शहर से आते हो और बड़े शहर में आप इस तरह की लाइफ देखते हो जो कि इनडिफरेंट है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए भी जो भी लोग बॉम्बे इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उन्हें एक तरह से लाइफस्टाइल के बारे में भी पता लगे कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, लाइफस्टाइल चैलेंजेस किस तरह के हैं।
सर देखिए, एक एक डिसिप्लिन जो है ना, वो दिल्ली में मंडी हाउस में एक बहुत अच्छी डिसिप्लिन मिल जाती है कि आप दिन भर जो करना है कीजिए, दोस्तों के साथ बैठ के चाय सुट्टी पे बात कीजिए। ये जो एक डिसिप्लिन है ना, ये मुझे यहाँ मुंबई में भी अच्छा लगा। जहां भी मेरे जूनियर हो या सीनियर हो, यार मुझे 2 दिन का काम मिला, मुझे इतने पैसे मिले, मुझे अच्छा लगा, चल तुझे समोसे मिठाई खिलाऊंगा। एक मतलब बहुत बेसिक, बहुत नीचे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये मुझे बहुत चार्ज देता है कि यार तुझे 10 दिन का काम मिला, तू चल मुझे कॉफी पिला। और इस तरह करके आपके 4-5 दोस्त होने बहुत जरूरी है,
बिल्कुल
जो कि जिसके साथ आप सेलिब्रेट कीजिएगा। देखिए, बड़ा काम बनना, बड़ा स्टार बनना, बड़ा एक्टर बनना, पहले आप बॉम्बे में रह पाएंगे अच्छे से, तब वो चीजें होंगी। और
बिल्कुल
वो रहने के लिए शेयर करने वाले लोग होने चाहिए। शेयर होने वाले लोग में छोटे डायरेक्टर भी होंगे कि भाई मुझे एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, तू करेगा क्या? हाँ मैं करूंगा। इस तरह की मेंटेलिटी पहले डेवलप करनी पड़ेगी। पहले तो आपका 5-6 लोगों का एक अच्छा ग्रुप होना ही पड़ेगा, जो जिससे आप शेयरिंग कर पाए। ये 7 साल में मेरा भी स्ट्रगल रहा है कि यहाँ तो लोग मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं
बिल्कुल
करते हैं।
बिल्कुल सिर्फ
पहले
काम
पहले आप हाँ कि यहाँ अरे ऑडिशन कहाँ, ऑडिशन कहाँ, ऑडिशन कहाँ, ऑडिशन कहाँ है, कितने दिन का शूट है, मेरा रूम रेंट, ये सब चीजें तो रहेंगी ही, लेकिन आपको वो 5 दोस्त जरूर ढूंढने होंगे जिनके साथ आप चाय की दुकान पे 2 चाय अच्छे से पिए, 1 सिगरेट पिए, और आप शेयर करें अपनी पूरी महीने 6 महीने की बातें।
ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, क्योंकि नॉर्मली इतनी छोटी चीजें जो इतनी छोटी हैं बट इतनी जरूरी हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करते। स्पेशली जब हम स्मॉल टाउन में रहते हैं तो इस तरह का एक चबूतरे पे चले गए या फिर कहीं पे किसी अड्डे पे चले गए, वहां पे जाके हम एक साथ बैठ के बात करते थे। तो बॉम्बे में इस तरह के कल्चर को ढूंढना या फिर अपना ही एक सब कल्चर इस तरह का बनाना वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज शहर क्योंकि काफी क्रूअल और इनडिफरेंट है।
हाँ, वो तो है
तो ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो इसमें
जी।
एक चीज और जो आजकल डिबेट चल रहा है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर वाला जो डिबेट है, तो उसको
जी
आप
जी
किस तरह
जी
से देखते हैं कि एक एज एन आउटसाइडर क्या वाकई बहुत ही क्रूअल है इंडस्ट्री आउटसाइडर्स के लिए, या फिर इसके अंदर भी कोई तरीके हैं जिसके थ्रू आउटसाइडर भी अपनी जगह बना सकते हैं?
सर, इस पे मेरा जो कॉल है, अभी तो मैं उतना बड़ा कुछ हूँ नहीं, थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। इसमें जो बाहर के लोग आए उनको नहीं सोचना चाहिए। ये देखिएगा, ये जो आउटसाइडर इनसाइडर जो लोग बोल रहे हैं, वो लोग एक एक पोजीशन पे पहुंच गए हैं तब बोल रहे हैं। हम या आप अभी कहीं पहुंचे ही नहीं है, हम आप बस सरवाइव कर रहे हैं। और हम आप पे हमारा आपका ये काम है, अगर कास्टिंग वाले ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, अच्छे से ऑडिशन देंगे, काम मिलेगा, खाएंगे पिएंगे, अपने घर में रहेंगे, बस। हम तो अभी उस पोजीशन, इसीलिए किसी भी आउटसाइडर को जो शुरू में आ रहे हैं उनको इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये सब भी आउटसाइडर इनसाइडर बोलने वाला गेम भी एक बड़े लोगों को बोलने में अच्छा लगता है। हम
बिल्कुल
लोग का ये है, एक कैरेक्टर मिले, एक एड मिल जाए, एक सीरियल मिल जाए, हम अपनी एक्टिंग अच्छे से पढ़ लिख के करें, क्योंकि जो आज आउटसाइडर है वो कल इनसाइडर होगा।
तो ये आपका पॉइंट भी इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर वाला सही है कि धीरे धीरे आउटसाइडर भी इनसाइडर बने जाते हैं। इनफैक्ट मैंने पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पहले आउटसाइडर थे अभी इनसाइडर हैं, और धीरे धीरे पावर का जो उनमें नशा है वो उतना ही है या बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट, और वो जिस तरह से ट्रीट करते हैं जो आने वाले आउटसाइडर हैं। सो मेरे हिसाब से ये डिबेट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसको सिंपलिस्टिक तरीके से देखा जा रहा है। तो दुर्गेश जी, बॉलीवुड में अभी कोविड का सिचुएशन किस तरह का है और क्या काम दोबारा चालू हुआ है कि नहीं?
अभी अभी जो मैंने आपको बताऊं, मैंने 5 दिन, 6 दिन, 2-2 दिन ऐसे काम किए हैं। 2 जून से मैंने काम शुरू कर दिया था, काम आने लगे थे, लेकिन वो बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो ठीक ठाक छोटे प्रोजेक्ट नहीं होते, वैसे काम चालू हो गए हैं, वैसे काम चालू हो गए हैं। और होप शो कि अच्छे से कुछ काम चालू हो कुछ लेकिन अब बहुत प्रिकॉशन के साथ शूट हो रहा है, शूट हो रहा है।
हाँ, लेकिन इसमें कोई बड़ी फिल्में जो हमें देखने को मिलेंगी अभी अगले कुछ महीनों में या फिर?
नहीं, मैंने बड़ी फिल्मों का जो भी न्यूज़ देखा है वो अभी शूट का न्यूज़ देखा है कि अक्टूबर नवंबर से उसका शूट शुरू होगा, लेकिन अभी रिलीज का कोई ऐसा नहीं है।
ओके दुर्गेश जी, लास्ट सवाल ये है कि आप करंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं?
जैसे कि अभी नेटफ्लिक्स पे एक नवाज सर की फिल्म आएगी, सुधीर मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया है,
सीरियस मैन?
सीरियस मैन।
हाँ, मनु जोसेफ ने लिखी है।
हाँ, उसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट किया है। और एक अभिषेक बच्चन जी की फिल्म आएगी द बिग बुल, हाँ उसमें भी छोटा सा पार्ट किया है। और अभी एक G5 और अल्ट बालाजी पे एक वेब सीरीज आती है वर्जिन भास्कर, उसका उसका सेकेंड सीजन अभी कंप्लीट किया है। और यही कुछ काम है और जो आने वाला और है।
ओके, थैंक यू दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फ्यूचर के लिए। और आपने थोड़ा सा
अरे
टाइम
थैंक यू
निकाल आपने
ब्रदर, थैंक
टाइम निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
यू ब्रदर।
थैंक यू। ओके, इस एपिसोड को लेके आपकी कोई राय, कोई क्रिटिसिज्म या कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू या मैसेज के थ्रू। और जाने से पहले मैंने सोचा है कि अब से हर एपिसोड के एंड में किसी न किसी आर्टिस्ट को, मैं स्पेशली म्यूजिशियन को मैं इंट्रोड्यूस करूं। तो मैं अभी प्ले कर रहा हूं अली फारका का गाना। अली फारका अफ्रीका के बहुत ही शानदार म्यूजिशियन हैं और ये है उनका गाना।
Yarabbi, is a coração.